नमस्कार भारत, सोमवार 22 जून, मैं हूं निखिल रंजन। ग्रीस की कर्ज संकट पर यूरोजोन के नेताओं की बैठक, आज ग्रीस ने दिया नया प्रस्ताव, क्या दूर होगी मुश्किल?
The Greek government would like a deal, I'm sure of that, but it would have to be a deal that really begins to solve the problem.
छत्तीसगढ़ में नन के साथ कथित बलात्कार कांड की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के बाद मामले में नया मोड़, कौन कर रहा है भारत में मिट्टी के बर्तनों को फिर से वापस लाने की कोशिश?
प्रथम वैज्ञानिक अगर कहा जाए तो वो कुम्हारी है, चाक का आविष्कार किसने किया, हम इनको वापस बोले आधुनिकता के साथ मॉडर्नाइज करके इस चीज को और नए रूप में हम वापस लेके आना चाहते हैं हिंदुस्तान में।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहते हैं अमरीकी अखबार, सुनेंगे पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। ग्रीस के कर्ज संकट के हल के लिए आज ब्रसेल्स में यूरोजोन के देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक से ठीक पहले ग्रीस की सरकार ने समझौते के लिए एक नई योजना पेश की है। ग्रीस सरकार का कहना है कि समझौते से दोनों पक्षों को फायदा पहुंचेगा। ग्रीस को इस महीने के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को $1.5 अरब से ज्यादा की राशि चुकानी है, अन्यथा वो दिवालिया हो सकता है और यूरोजोन से बाहर भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने पत्रकार के अपहरण और हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बालाघाट के कटंगी निवासी 44 वर्षीय संदीप कोठारी का गत 19 जून की रात को अपहरण कर लिया गया था। उनके परिवार ने 20 जून को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों ने कहा है कि उन्होंने पत्रकार की हत्या के बाद उनका शव जला दिया था। पुलिस ने बताया कि मामले का चौथा अभियुक्त अभी फरार है। बताया जा रहा है कि संदीप स्थानीय भूमाफिया और बालू खनन माफिया के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे थे। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में गर्म हवाओं के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर मौतें बंदरगाह शहर कराची में हुई हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच गया था। कराची के जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सेमी जमाली का कहना था कि मरने वालों में ज्यादातर लोग उम्रदराज थे,
जो हीट स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट किए थे, यानी हाई ग्रेड फीवर्स के साथ आए थे, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ और डिहाइड्रेटेड थे। सीजर्स और फिट्स भी बहुत से पेशेंट्स को हो रहे थे। अब आज सुबह से फिर हीट वेदर इतना ख़राब था और इतनी गर्मी थी कि आज भी ये एक्सपेक्टेड था और आज भी सारा दिन पेशेंट्स आते रहे और हमारे पास हमारे नोटिस में था और हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था और इसी तरह पेशेंट्स आते रहे। शाम को बाहर किसी सूरत पेशेंट्स का आमद और रफ्त कम हुई, लेकिन जैसे ही अफ्तार का वक्त आया उसके बाद अगेन द नंबर्स इनहांस्ड ग्रेटली।
ये थी कराची के जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी विभाग की प्रमुख डॉक्टर सेमी जमाली। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। टेलीविजन चैनल अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क ने जर्मनी से कहा है कि वो उनके एक महत्वपूर्ण पत्रकार अहमद मंसूर को तत्काल रिहा कर दे। अहमद मंसूर को मिस्र के अधिकारियों के आग्रह पर बर्लिन हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। मंसूर ने अल जजीरा को बताया है कि वो सोमवार तक कस्टडी में रहेंगे, जब तक कि बर्लिन हाईकोर्ट मिस्र की प्रत्यर्पण अपील पर कोई फैसला नहीं ले लेती। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेज़बान बांग्लादेश ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं bbchindi.com और मोबाइल पर भी। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यूरोपीय देश ग्रीस के लिए आज का दिन बेहद अहम है। ग्रीस के कर्ज संकट के हल के लिए आज ब्रसेल्स में यूरोजोन के देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक से ठीक पहले ग्रीस की सरकार ने समझौते के लिए एक नई योजना पेश की है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
ग्रीस सरकार की इस नई योजना में क्या कुछ कहा गया है इसकी जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि समझौते से दोनों पक्षों को फायदा पहुंचेगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने यूरोपीय नेताओं के साथ इस योजना पर बातचीत की है। ग्रीस को इस महीने के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को $1.5 अरब से ज्यादा की राशि चुकानी है, अन्यथा वो दिवालिया हो सकता है और यूरोजोन से बाहर भी हो सकता है। گریس کی ستارود پارٹی سیریزا کے ایک سدسیہ کوسٹاس لیپاوسٹاس نے بی بی سی سے بات چیت میں کہا کہ وہ سمجھوتے کو لے کر بہت زیادہ آشانوت نہیں ہیں۔ گریس سرکار سمجھوتے کی سفلتا کی امید کرے گی، لیکن اسے ایک ایسا سمجھوتا ہونا چاہیے جو کہ سمسیا کو صحیح معنی میں ختم کر سکے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس سے نہ صرف گریس کو ایک مشت دھن راشی مل جائے بلکہ گریس کو بھی اپنے خرچوں میں کٹوتی کا راستہ دیکھنا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے قرض دیا ہے وہ اس استھتی میں ایسی کسی سمبھاونا پر وچار کر رہے ہیں۔ کوسٹاس لیپاوسٹاس کے شبد۔ وہیں گریس میں عام لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ گریس کے آرتھک سنکٹ کا حل جلد نکل آئے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں سے بی بی سی نے بات کی جن کا ماننا تھا کہ سمسیا کافی کچھ حل ہو چکی ہے، یدی کچھ اور پریاس کیے جائیں تو گریس کا آرتھک سنکٹ ختم ہو سکتا ہے۔
It's very difficult because my pension has already been halved. The previous government cut all the additional benefits.
اس بیچ خرچوں میں کٹوتی کا ورودھ کرنے والے لوگ راجدھانی ایتھنس میں بڑی سنکھیا میں جٹے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی تصویروں سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایتھنس کا سنٹیگما اسکوائر ایسے لوگوں سے بھرا ہے جو کہ گریس کی سرکار کے پرتی اپنا سمرتھن جتا رہے ہیں۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ گریس کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا سرکار کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اس بیچ پردھان منتری سپراس خرچ میں کٹوتی کی یوروپی سنگھ کے دیشوں اور قرض داتاؤں کی مانگ کو خارج کر چکے ہیں۔
قرض سنکٹ میں ڈوبے گریس کے لیے آج کا دن بے حد اہم ہے۔ رپورٹ سنا رہے تھے سمیر آتمج مشر۔ نمسکار بھارت، آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈیو پر نکھل رنجن کے ساتھ۔ رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ ضلع میں ایک پترکار کی ہتیا کر اسے جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پترکار لگاتار کھنن مافیا اور چٹ فنڈ کمپنیوں کے خلاف لکھ رہا تھا۔ اس معاملے میں پولیس نے 3 لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ سنیے شرے نیازی کی رپورٹ۔
مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ ضلع کے کٹنگی تحصیل کے 44 ورشی پترکار سندیپ کوٹھاری کا جلا ہوا شو مہاراشٹر کے وردھا کے پاس ایک کھیت میں ملا ہے۔ جانکاری کے مطابق اویدھ کھنن اور چٹ فنڈ کے معاملوں سے جڑے 3 لوگوں نے سندیپ کا پہلے اپہرن کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی ہتیا کر اس کے شو کو آگ لگا دی۔ پولیس نے اس معاملے میں کٹنگی نواسی راکیش نسوانی، وشال دانڈی اور برجیش ڈہروال کو گرفتار کیا ہے۔ کٹنگی تھانے کے پربھاری سنجے چوکسی نے بتایا،
سندیپ کوٹھاری کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے بالا گھاٹ طرف سے لے بھاگے، اور اس کے بعد اس کی اسی گاڑی کے چلاتے دوران گاڑی میں ہی اس کو دبا کر، سیٹ کے نیچے دبا کر اس کا مرڈر کر دیا، اور لاش کو ساکھی چھپانے کی درشٹی سے رات ہی میں اپنی سوئفٹ ڈیزائر کار سے لا کر ادھر سندھی تھانے کے پاس بڑھدا ضلع میں ریلوے ٹریک کے پاس اس کو لا کر اس پہ ڈیزل اور اوڑھنے کے جو کپڑے رہتے ہیں بستر ان کو رکھ کر آگ لگا دی۔
پولیس کے مطابق 3 گرفتار آروپی اویدھ کھنن اور چٹ فنڈ کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ پترکار پر ان کے خلاف اویدھ کھنن کا ایک عدالت میں درج معاملے کو واپس لینے کا دباؤ بنا رہے تھے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ شاید سندیپ اس معاملے کو واپس لینے کو تیار نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کی ہتیا کر دی گئی۔ حالانکہ پولیس ابھی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ اس معاملے میں کچھ کہنا جلد بازی ہوگا۔ سندیپ کوٹھاری کا اپہرن 19 جون کی رات عمری گاؤں کے قریب سے کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے اس کار کو بھی برآمد کر لیا ہے جس سے سندیپ کا اپہرن کیا گیا تھا۔ سندیپ پچھلے کچھ سالوں سے سوتنتر پترکاریتا کر رہا تھا، اس سے پہلے وہ دینک سماچار پتروں سے جڑا رہا ہے۔
رپورٹ سنا رہے تھے شرے نیازی۔ مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ ضلع میں پترکار کی ہتیا کر جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اور اب چھتیس گڑھ۔ چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں ایک نن کے ساتھ کتھت ساموہک بلاتکار کے معاملے میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پیڑتا کے ساتھ بلاتکار کی کوشش کی آشنکا بھر ہے اور فی الحال جانچ کی جا رہی ہے۔ ادھر عیسائی سمودائے نے پورے معاملے میں پولیس کی اور سے اس معاملے کو رفع دفع کیے جانے کی آشنکا جتائی ہے۔ رائے پور سے آلوک پتل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور کے پنڈری تھانہ علاقے میں شنیوار کو تڑکے کرسچن مشنری دوارا سنچالت ایک میڈیکل سینٹر میں ایک نن کے ساتھ کتھت ساموہک بلاتکار کی گھٹنا میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے میڈیکل جانچ کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ پیڑتا نن کے ساتھ بلاتکار کی کوشش کی آشنکا بھر ہے۔ मामले की जांच कर रहे रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है।
नहीं, अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें लिखा सेक्सुअल असाल्ट माइट हैड बीन, और रेप के बारे में उसमें एक मेंशन किया गया कि नो डेफिनेट ओपिनियन कैन बी गिवन। तो इस कारण उन चीज़ों पे अभी स्लाइड प्रिजर्व किया गया, स्लाइड भी वो भी जब्त की गई, वो भी अभी एनालिसिस के लिए जाना है। तो इसके आधार पर अभी और भी हमारी विवेचना को आगे बढ़ा।
पुलिस के इस दावे के बाद से ईसाई समुदाय के लोग हैरान हैं। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के विजी फादर सेबेस्टियन ने इस आशंका से इनकार नहीं किया है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव हो सकता है या पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई हो।
जो हम लोग जो रैली निकाले थे और ज्ञापन देने के लिए गया था गवर्नर को, उस समय एडिशनल एसपी जो शुरू से है इस घर में, उन्होंने सबके सामने ये घोषित किया है कि हम लोगों ने रेप का एफआईआर दर्ज किया है, 376 का धारा लगा करके एफआईआर दर्ज किया है, और किसी को भी कॉपी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। हमारे सामने पुलिस एक बात करती है और फिर मीडिया को दूसरे बात करती है, तो फिर वो ये जानेगा उनका मकसद क्या है। हो सकता है कि उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है कि उनको रफा दफा करने का विचार हो सकता है कि वो माने मामला को कमजोर बताने के लिए हो, ये सब तो हो सकता है उनका तरीका अपना हो। तो
इधर नन के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद सरगुजा से लेकर बस्तर तक ईसाई समुदाय द्वारा प्रदर्शन की खबरें हैं। विपक्षी दल कांग्रेस समेत दूसरे संगठनों ने भी रविवार को प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बिशप हेनरी ने सरकार को 72 घंटों के भीतर बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे राज्य में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है।
72 घंटे के अंदर अगर उन दोषियों को नहीं पकड़ेंगे तो ऐसा हम लोग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में हम लोग जाएंगे और उधर के लोग भी हैं, हम लोग जो धरने पर बैठेंगे।
इन चेतावनियों और पुलिस के दावों के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल यह मुद्दा गर्माएगा, और जिस तरीके से कांग्रेस समेत दूसरे संगठन इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उससे यह भी तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कल ट्वीट कर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा। उन्होंने अरुण जेटली से अपना फोन रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। खुद को भगोड़ा कहने वालों को भी ललित मोदी ने आड़े हाथों लिया है। इस पूरे मामले पर नजर थी BBC संवाददाता वंदना की, जिनसे बात की हमारे साथी अशोक कुमार ने।
तो वंदना जी, कल जैसा कि ट्विटर पर हमने देखा, ललित मोदी ने एक के बाद एक बौछार की और कई सारे लोगों को लपेटे में लेने की कोशिश की। अरुण जेटली भी इनमें से एक हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने?
जी, बहुत तीखे तेवर थे ट्विटर पर उनके, और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उनके जो शब्द वो ये थे कि कांग्रेस और भाजपा ही लेकिन दिल से कांग्रेसी अरुण जेटली अब मेरा निशाना है। और ललित मोदी ने कहा कि अरुण जेटली अपने फोन रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। उन्होंने ट्वीट किया कि अरुण जेटली को स्वेच्छा से अपने फोन रिकॉर्ड मीडिया में सार्वजनिक कर देने चाहिए। उनके फोन पर आने और जाने वाले कॉलों से एक मजेदार पैटर्न दिखेगा। ये उनके आरोप हैं अरुण जेटली पर। और अरुण जेटली, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इस पूरे विवाद में कहा था कि ललित मोदी पर भारत में कथित वित्तीय हेराफेरी के कई मामले चल रहे हैं, जांच चल रही है, तो ये काफी पेचीदा सा मामला है।
कुछ ट्वीट्स में शायद उन्होंने अपने आप को भगोड़ा कहे जाने पर भी सख्त आपत्ति जताई है।
जी, बहुत ही नाराज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझे भगोड़ा कह रहे हैं मैं उन पर मुकदमा करूंगा एक एक करके, और ऐसा तभी कहें जब आपके पास सबूत हो या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। उन लोगों की इशारा है जो कि उनके लिए भगौड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं लेकिन किसी राजनीतिक दबाव के आगे वो नहीं झुकेंगे, और अदालत में उन्होंने कहा है कि वो इस सब का मुकाबला करेंगे।
तो जिस तरह की बातें इन तमाम ट्वीट से निकल कर सामने आ रही हैं वो साफ करती हैं कि मामला अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। खासकर हाल के दिनों में जिस तरह सरकार को इस मामले में सफाई देनी पड़ी, विपक्ष ने भी इसको लेकर सरकार पर हमले किए हैं, तो ये मामला अभी और बढ़ेगा।
जी बिल्कुल, भारत की जो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज और राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की, जबकि इसकी सफाई में सुषमा स्वराज ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जुलाई 2014 में मोदी की उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था, गुहार लगाई थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं और पुर्तगाल में उनका ऑपरेशन होना है, और स्वराज ने यह भी कहा था कि उन्होंने मानवीय आधार पर एक तरह से मदद की है, लेकिन उसके बाद से मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया और बहुत विवाद पैदा हो गया है।
बीबीसी संवाददाता वंदना और अशोक कुमार चर्चा कर रहे थे उन ट्वीट्स की जो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कल जारी किए थे। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना और दिल्ली में तो इस मौके पर दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। इतने तामझाम और उत्साह के साथ योग दिवस के आयोजन को अमरीकी मीडिया में किस तरह से देखा जा रहा है? अमरीका में भी इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी बता रहे हैं कि अमरीकी अखबारों ने इस बारे में कैसी रिपोर्टिंग की है, साथ ही ये भी कि न्यूयॉर्क में ये आयोजन कैसा रहा।
अमरीका में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने खासी धूम मचाई है। अमरीका के अधिकतर समाचार पत्रों के इंटरनेट संस्करण में योग दिवस को लेकर कई लेख छपे हैं जिनमें विस्तार से बताया गया है कि विश्व भर में किस प्रकार योग दिवस के कार्यक्रम मनाए गए और खासकर भारत में राजपथ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग दिवस के मौके पर प्रदर्शन की चर्चा भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने राजपथ के योग दिवस के कार्यक्रम की तस्वीर छापी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिख रहे हैं और उनके पीछे दूर तक योग मुद्रा में लोग बैठे हैं। अखबार लिखता है कि इस तरह के प्रदर्शन से मोदी सरकार ने उस विचार को फिर से जगाने की कोशिश की जिससे योग के जरिए राष्ट्रीय गौरव को वापस लाए जाने की और प्राचीन मूल्यों को फिर से वापस लाने की बात की जाती है। इसके अलावा योग को लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताए जाने से जन्मे विवाद की भी चर्चा की गई है। वाशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन लगाई है कि दसियों लाख लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अपनी चटाइयां निकाल ली। अखबार लिखता है कि योग दिवस के मौके पर लोग दुनिया भर में योग से होने वाले फायदे को उजागर कर रहे हैं जिससे मांसपेशियां खिंचती हैं और मस्तिष्क शांत होता है। वाशिंगटन पोस्ट में कोलकाता में एक स्कूल के छात्रों के योग दिवस कार्यक्रम की भी तस्वीर छापी है। इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर पर योग दिवस में भारी भीड़ की तस्वीर भी कई समाचार पत्रों की वेबसाइट्स पर है। टीवी और रेडियो पर भी खबरों में योग दिवस के चर्चे हो रहे हैं। कई शहरों में टीवी चैनलों पर योग दिवस की खबरें छाई हुई हैं।
Today is also the first international day of yoga events happening around the world.
अमरीकी राजधानी वाशिंगटन के प्रतिष्ठित नेशनल मॉल पर 1500 लोगों ने योग दिवस के मौके पर योग किया और अन्य शहरों में खासकर न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने योग में भाग लिया। इसके अलावा शिकागो, अटलांटा, ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में भी हजारों लोग योग दिवस के लिए उमड़ पड़े। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 20,000 से अधिक लोगों ने योग दिवस में भाग लिया जिनमें अधिकतर अमरीकी लोग थे। एक योग सेशन खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने पर खुशी जताई।
Today was extra special. You have International Yoga Day now, so it's not just the summer solstice.
It's the first ever International Yoga Day. It's pretty exciting to be part of it.
वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के साथ साथ कई अमरीकी मंत्रालय के प्रतिनिधि योग दिवस में भाग लेने पहुंचे। उनके अलावा विश्व बैंक, शिक्षण संस्थान और कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी योग दिवस में भाग लिया। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमरीकी कांग्रेस और कई राज्यों के नेताओं ने बधाई संदेश भी जारी किए। इनमें टेक्सास, मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया, मेरीलैंड, इलिनॉय आदि के गवर्नर भी शामिल हैं। इसके अलावा कई शहरों के मेयर ने भी योग दिवस पर बधाई संदेश जारी किए हैं। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पहली महिला हिंदू अमरीकी सांसद तुलसी गबार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समर्थन में कांग्रेस में एक प्रस्ताव भी पेश किया है। और आज यानी 22 जून को भारतीय दूतावास कैपिटल हिल या अमरीकी कांग्रेस में भी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करेगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ। भारत में नदी घाटी की सभ्यताओं के साथ फले फूले मिट्टी के बर्तन अब अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सदियों से इन बर्तनों का निर्माण करते रहे कुम्हार प्रजापति समाज का कहना है कि धातु और प्लास्टिक से बने बर्तनों ने मिट्टी के बर्तनों को हाशिए पर धकेल दिया है। कुम्हार प्रजापति समाज ने इन बर्तनों की खूबियों को प्रचारित करने के लिए देश भर में अभियान शुरू किया है। एक रिपोर्ट के साथ नारायण बारेट।
कहीं कोई माटी की यशोगाथा गाता है तो कहीं कोई पीर फकीर मिट्टी का मोल याद दिलाता है। इंसान की विकास यात्रा में माटी के बर्तन साथ साथ चले हैं, लेकिन अब आदमी कहीं आगे निकल गया, माटी के बर्तन पीछे छूट गए। अब कुम्हार प्रजापति समाज ने इन बर्तनों को फिर से लोकप्रिय बनाने का बीड़ा उठाया है। अमृत माटी अभियान के अंजनी किरोड़ीवाल कहते हैं,
3% लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर रहे हैं और अगर इसको अभी इसको प्रोत्साहन ना मिला तो शायद आने वाले 2-4 साल में ये पूरा ही खत्म होने की कागार पर है। सरकार की ओर से इसमें कोई ऐसी कोई योजना नहीं है, ना किसी प्रकार की विकास हुआ है, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अगर कहा जाए तो वो कुम्हारी है। चाक का आविष्कार भी इसने किया। हम इनको वापस बोले आधुनिकता के साथ मॉडलाइज करके इस चीज़ को और नए रूप में हम वापस लेके आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े स्टोर खोलना चाहते हैं, इनको आर्थिक रूप से इनको मजबूत करना चाहते हैं।
कबीर जैसे संतों ने ना केवल माटी बल्कि कुम्हार को भी अपनी रचनाओं में जगह दी है। कबीर के बनारस में कुम्हार बर्तन तो अब भी बनाते हैं लेकिन उन्हें माटी का मोल नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव क्षेत्र के जयापुर गांव में ही कुम्हारों की हालत दयनीय है। जयापुरा की फेरी लगाने के बाद बनारस के मेवालाल प्रजापति ने कुछ यूं चित्रण किया।
पुराने ढंग का काम कर रहे हैं और करीब करीब 75% लोग काम छोड़ चुके हैं क्योंकि किसानों से जो काम उनको मिलता है बिक्री का कोई साधन नहीं है। माल बना ले तो बेचने के लिए उनके पास साधन नहीं है और जस करता है तो डम पड़ा रहता है, तो जो किसान उनको ऑर्डर देते हैं उतना ही वो काम करते हैं। मुश्किल से साल भर में 1 महीने का उनके पास काम है, बाकी महीनों में वो जा करके खेती की मजदूरी करते हैं या और जगह कारखानों में जा करके मजदूरी करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, कारपेट में माने मजदूरी करते हैं। नई तकनीक या नए ढंग के काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज जो है मुश्किल से 10% मिट्टी के बर्तन की मांग है, लेकिन आज सब खत्म हो गया।
इन बर्तनों ने कान्हा के लिए घी दूध संचित किया तो अयोध्या में दीपक बन रोशनी बिखेरी। अब वही बर्तन कदरदान को तरस गए हैं लेकिन अब प्रजापति समाज ने अपने काम में विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना शुरू किया है। मुंबई के अजय प्रजापति कहते हैं, इससे उम्मीद का दिया फिर जला है।
तभी हम नई टेक्नोलॉजीज को डाई के सिस्टम से बना रहे हैं। डाई इन द सेंस एक टाइप से प्रेस मशीन होगा, प्रेस मशीन के थ्रू बनेगा जिससे क्या होगा कि एक ये फास्ट सर्विस होगी, जल्दी बनेगा, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेंगे। दूसरी चीज़ एक नई टेक्नोलॉजी के रूप से फिनिशिंग जो इसकी होगी, जैसे नॉर्मल हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और एक इलेक्ट्रिक से बनाए हुए इस पे प्रेस मशीन से बनाए हुए बर्तन में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की मात्रा बढ़ जाएगी। तो फिनिशिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लुक, ये तीनों चीज़ उसमें एडेड हो जाएगा जिससे ये सेफ्टी भी हो जाएगी। डिमांड जो है अभी बहुत बढ़ रही है, सोशल मीडिया से बहुत सारे जगह से रिक्वायरमेंट आती है। डिनर सेट है, ग्लास है, इवन हमारे फ्रिज भी है मिट्टी के, पूरा डिनर सेट तो है ही।
गुजरात में दहोद के दीपक कुमार सोने चांदी का काम करते हैं पर वे कहते हैं घर में मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्वाद और सेहत के लिए अच्छे हैं। मध्य प्रदेश में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राज के प्रजापति अपने ज्ञान और अनुभव से कहते हैं इन बर्तनों में भोजन की पौष्टिकता ठीक रहती है।
ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी हैं और कंपैरिजन यदि करें तो फायदेमंद भी हैं। बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन बचत हो रही है, हमारे पांचों तत्व जो होते हैं कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, डाइटरी सप्लीमेंट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अन्य की तुलना में मिट्टी के बर्तनों से हम बच सकते हैं। जिस प्रकार हम एल्युमिनियम और नॉन स्टिक बर्तनों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे जो हमारे सप्लीमेंट्री फूड हैं जो जल जाते हैं।
वक्त के साथ पकवान के प्रकार बढ़े हैं और आकार भी, लेकिन अब पकवान उन बर्तनों से दूर हो गए हैं जो कभी माटी की खुशबू से सरोबार थे।
कुदरत है पगला कुम्हार जाने कैसा घड़ा बनाएगा, कुदरत की करने को तू काहे समझे भूल है, ओ माटी के इंसान कह दे छूटे तेरे उसूल है, माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे।
नारायण बारेट, जयपुर, राजस्थान।
नारायण बारेठ की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब सुनते हैं पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
इस वक्त अगर कोई इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि मजबूत पैकिंग वाली टेप का 500 रुपए वाला एक एक डिब्बा दिल्ली और इस्लामाबाद भिजवा दे ताकि दोनों देशों के उन मंत्रियों और पार्लियामेंटेरियंस के मुंह पे इसे चिपका दिया जाए जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वो हवा में मुक्के क्यों चला रहे हैं, उनके मुँह से झाग क्यों निकल रहे हैं और कौन उन्हें पट्टी पढ़ा रहा है कि ऐसा करोगे तो दूसरा मुँह के बल गिर के खाक चाटने लगेगा। यारो, अक्ल इतनी महंगी कब से बिकने लगी? अगर दोनों देशों के भांत भांत के मंत्रियों और آڑے ترچھے دھرندروں کو ہی معاملات سلٹانے ہیں تو پھر ودیشی منترالے کو گھر بھیج کے کچھ پیسہ ہی بچا لو۔ شوقین بھاشنیوں کی بھیڑ کو سمجھانا آخر کس کی ذمہ داری ہے کہ دیشوں کے آپسی سمبندھ گڑیا گڈنے کا کھیل نہیں، یہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا معاملہ ہے، کسی لاوارث گنجے کی ٹانٹ نہیں کہ ہر آتا جاتا ایک آٹھ ٹھونگا جڑ کے ہنستا کھیلتا بڑھ جائے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ جب فوجی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ باز کی وردی اتار کے فاختہ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، مگر پچھلے ایک مہینے کا میڈیا دیکھ لیں، کوئی ریٹائرڈ افسر کہہ رہا ہے کہ یہ بھارت وہ والا نہیں ہے جو سہ جاتا تھا، ادھر سے ایک ہاتھ اٹھے گا تو ادھر سے 10 چماٹوں کا جواب ملے گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی پرمانو ہتھیار شب برات کے پٹاخے سمجھ کے جمع نہیں کیے بھائین، اور میڈیا کی پھاپا کٹنی ایسے چسکے لے کے ان ریٹائرڈ پینشنیوں کی بنا مطلب باتیں اچھال رہی ہے جیسے انڈیا پاکستان کو کس راستے پہ جانا ہے یہی گھر بیٹھے جرنیل اور بیوروکریٹ ہی تو طے کریں گے۔ یہ کیسا نیتریتو ہے جسے یہ تو معلوم ہے کہ کتنا آگے جانا ہے پر یہ نہیں پتا کہ پیچھے کتنا ہٹنا ہے، اور ہر دفعہ امریکہ ہی کیوں آ کے سمجھاتا ہے کہ پیارے بچوں سیم دھیرج، لوگ ہنس رہے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹو، شاباش۔ کرگل کے سمے بھی یہی ہوا، 2002 میں لوک سبھا پہ حملے کے بعد سیما پر 10 مہینے تک فوجوں کو آمنے سامنے کھڑے رکھنے کے بعد بھی یہی ہوا، اور آج بھی کوئی امریکی ہی سمجھا رہا ہے کہ لڑنا بگڑنا گالیاں دینا اچھی بات نہیں، چلو چلو گھر جاؤ، امی پریشان ہو رہی ہیں۔ کیا آج تک کوئی قوم یا ورگ کسی دوسرے راشٹر یا جاتی کو 100% ختم کر پایا؟ تو کیا تم آخری مسلمان ختم کر سکتے ہو، اور تم آخری ہندو ختم کر سکتے ہو، اور تم آخری پاکستانی کو ختم کر سکتے ہو، اور تم آخری بھارتی کو ختم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تو منہ پہ ٹیپ لگا کے وہ کرو جو اصل میں تمہارے کرنے کے کام ہے۔
پاکستان سے وسعت اللہ خاں کی ڈائری آپ نے سنی، آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کل بنگلہ دیش نے بھارت کو دوسرے ون ڈے مقابلے میں 6 وکٹ سے ہرا دیا، یہ بھارت کی لگاتار دوسری ہار تھی۔ اس طرح بنگلہ دیش نے پہلی بار بھارت سے کوئی ون ڈے سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ بھارت کے لچر پردرشن پر ہمارے سہیوگی آدیش کمار گپت نے بات کی کرکٹ سمیکشک ایاز میمن سے۔
بہت ہی قرار ہی مادہ ہے، کوئی مڈل ویٹ یا فیدر ویٹ باکسر نے ایک ہیوی ویٹ چیمپئن کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ ورلڈ کپ سیمی فائنل تک پہنچی تھی، بنگلہ دیش ابھی بھی، حالانکہ ان کے پاس بہت ہی ہونہار ینگ کھلاڑی ہے، یوا کھلاڑی ہے بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں بھی، کے باوجود جتنا تجربہ انڈین ٹیم میں ہے، جتنا کلاس اور پیڈیگری انڈین ٹیم میں ہے، وہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے۔ تو کہیں افسوس تو ہوگا کہ نہ صرف یہ میچ، دونوں ہی میچ بہت بری طرح ہاری ہے بھارت، اور مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ انٹروسپیکشن، کچھ چنتن کرنا ہوگا، کیونکہ نہ بیٹنگ نہ بولنگ یہاں پر چلی ہے۔
ویسے آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جیت پہ جو ان کے نئے تیز گیند باز ہیں مستفیض الرحمان، ان کا بڑا یوگدان ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں میچوں میں کل ملا کر 11 وکٹ اپنے نام کیے ہیں۔
بہت ہی زبردست آغاز ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں، پہلی میچ میں 5 وکٹ لینا اور دوسری میں 6، یہ بتاتا ہے کہ یہ فلوک پرفارمنس نہیں ہے، ان میں قابلیت ہے، اور قابلیت یہ ہے کہ وہ گیند کو موو کرتے ہیں ہوا میں بھی، آف دا پچ بھی، اور یہاں پر گتی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی انہیں، یہ نہیں ہے کہ 150-145 کی گتی سے ڈالتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں 125-130 کے بیچ، تو یہ جتاتا ہے کہ کنٹرول آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس وہ ہنر ہو جس سے آپ بلے باز کو چکما دے سکے موومنٹ سے، تو آپ کو کہیں بھی سپاٹ پچز پہ بھی وکٹ مل سکتی ہے۔
ویسے بھارتی ٹیم کی ہار کے آپ مکھیہ کارن کیا مانتے ہیں؟
مجھے لگ رہا ہے کچھ حد تک تو، یا زیادہ حد تک، کچھ اوور کانفیڈنس تھا، کیونکہ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ میں ہرایا تھا، حالانکہ تھوڑی سی کانٹروورشل جیت تھی وہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا ہوگا کہ ورلڈ کپ میں انڈیا کی ٹیم بہت ہی مضبوط نظر آئی تھی، تو ایک طرح سے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید سوچے ہیں کہ تو کلین سویپ آسان سے ہو جائے گی، سیریز تو جیتنا ہی ہے، تو تھوڑا سا ریلیکسیشن جو آ جاتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے انٹرنیشنل اسپورٹ میں، اور یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سیریز میں، کیونکہ پہلی میچ میں یاد کریں تو اچھا اسٹارٹ ملا تھا شیکھر دھون اور روہت شرما کے دوارا، لیکن اس کے باوجود اس ٹوٹل پر بل نہیں کر پائے اور وہ میچ بھی ہارا ہے، تو خیر بیٹنگ چلی ہی نہیں، اور دونوں ہی میچز میں کہوں گا بولنگ فیل ہوئی۔
کرکٹ سمیکشک ایاز میمن سے یہ بات چیت کی تھی ہمارے سہیوگی آدیش کمار گپت نے، اور اب کارکرم کے آخر میں سن لیتے ہیں پرمکھ سماچار۔
بی بی سی سماچار۔ گریس کے قرض سنکٹ کے حل کے لیے آج برسلز میں یورو زون کے دیشوں کی ایک مہتوپورن بیٹھک ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دکشنی سندھ پرانت میں گرم ہواؤں کے کارن 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ अलजजीरा न्यूज़ नेटवर्क ने जर्मनी से कहा है कि वो उनके एक महत्वपूर्ण पत्रकार अहमद मंसूर को तत्काल रिहा कर दे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने पत्रकार के अपहरण और हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में। आज तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। सभी साथियों के साथ निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।